हमने इस अभी विजयादशमी मनाई। विजयादशमी का मतलब होता है फेस्टिवल ऑफ विक्ट्री, विजय की दशमी है। दशमी तो तिथि है, डेट है, क्योंकि ये अश्विन मास में शुक्ल पक्ष के दसवीं तिथि में उसका डेट ही दस है। हमारे यहां जितने भी त्योहार होते हैं वो नवमी अष्टमी, वो नवमी का मतलब नवी, नाइन्थ डेट है। जन्माष्टमी मतलब एट्थ डेट है, वो हिंदुस्तानी डेट होता है। तो दशमी मतलब दसवीं है। करवा चौथ आ रहा है, चौथ मतलब चतुर्थी है, वो फोर्थ डेट है। वो ध्यान रखिएगा, वो लास्ट वाली जो वर्ड होता है वो डेट से रिलेटेड होता है। इसीलिए हम अंग्रेजी कैलेंडर देख के नहीं फिक्स करते हैं, हमारी अपनी तिथियां होती है जिसको तिथि कहते हैं, तारीख होता है, और तारीख उसके साथ जुड़ा होता है। लोगों को कैलेंडर देख के फिक्स करने की जरूरत नहीं उसमें। जन्माष्टमी का मतलब वो अष्टमी आठवीं तारीख में ही आता है, नवमी का रामनवमी मतलब वो नाइन्थ डेट को ही आता है, विजयादशमी मतलब वो दसवीं डेट को ही आता है। तो कल आपके अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष के दसवीं तिथि थी, जिसे आप दशहरा भी कहते हैं। दशहरा का मतलब जब दस चीजें को हमने नष्ट कर दिया। नवरात्रि जिसको नौ रात्रि बिताने के बाद, उपवास के बाद, तपस्या के बाद, जब हम अपने शत्रुओं को, अंदर और बाहर के शत्रुओं को जीतने के लिए नौ दिन या रात तक साधना करते, तो दसवें दिन हम विजय को प्राप्त करते और उसको सेलिब्रेट करते हैं और उसको फेस्टिविटी के साथ मनाते हैं। और ये किस पर किसका जय है? द सेलिब्रेशन ऑफ विक्ट्री ऑफ राइटसनेस ओवर एविल, अच्छाई का। जैसे हम अपने बच्चों को सिखाते हैं, जब रावण जलाता है, जलता है, ये अच्छाई का बुराई के ऊपर विजय है। अब वो अच्छाई या बुराई, सिर्फ रावण कोई बुरा, राम अच्छा, ऐसा नहीं है। ये तो एक लेजेंड है, एक नरेशन है, मैसेज। रावण तो जितना पाप किया था उससे ज्यादा पाप करने वाले गली गली घर घर में मिल जाते हैं। मतलब अगर आपके गली में 10 घर है, उसमें से 5 घर में रावण से भी खूंखार रावण मिलेंगे। तो ये मैसेज है, वो अगर दिल तक उतरता है तो फिर तो त्योहार सफल हो जाता है। रावण को, रावण की गलतियां बहुत कम थी, जितनी आज के तारीख में हम देखते, हमारे घर घर में बच्चे रावण बनते जा रहे। तो ये बुराइयों को, अपने अंदर की बुराइयों को जीतने का नाम है, बाहर की बुराइयों को जीतने का भी नाम है। वैसे विजयादशमी या दो दशहरा मनाते हैं, उसके पीछे बहुत सारे, जैसे हमारे हर त्योहार के पीछे बहुत सारे माइथोलॉजिकल लीजेंड्स होते हैं, हिस्टोरिकल भी नरेशंस होते हैं, कुछ सच होते हैं, कुछ मिथ होते हैं, कुछ मिक्सचर होते हैं। तो विजयादशमी या दशहरा के भी साथ इसी तरह के बहुत सारे मिथ, हिस्ट्री, मिथ विथ हिस्ट्री, बहुत कुछ जुड़ा हुआ है, उसके फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट्स हैं जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। जनरली जो मिथोलॉजिकल लीजेंड्स हैं साउथ में और ईस्टर्न इंडिया में, जो लीजेंड्स हैं वो होता है कि मां दुर्गा महिषासुर या राक्षसों के साथ लड़ाई करके उनको उस दिन मारा, तो उसको सेलिब्रेट करते हैं विजयादशमी। अब ये दुर्गा काली बड़ा सिंबॉलिक है, ये शायद माइथोलॉजिकल माइथोलॉजी होने के बावजूद भी इसका अपना एक महत्व है। ये दुनिया में बहुत रेयर आपको मिलेगा जहां ईश्वर को स्त्री के रूप में देखा जाता हो। किसी दूसरे रिलीजन में इस तरह की सोच कम मिलेगा। हमारे यहां पुरुष भी देवता, ईश्वर को पुरुष के रूप में देखने की है, स्त्री के रूप में भी देखने की है, नपुंसक रूप में भी देखने की है, क्योंकि ईश्वर का आप लिंग कैसे डिसाइड करेंगे, जेंडर कैसे डिसाइड करेंगे? वो तो निराकार तत्व है, निर्विकार है, सर्वव्यापक है। पर जब व्यक्ति कवि उसको कल्पना में लाता है तो अपने अपने ढंग से लेता है। ये जो मूवमेंट चला नए मॉडर्न सोसाइटी में फेमिनिज्म का, ये हमारे यहां तो हजारों साल पहले धार्मिक साहित्य में ही इसका मूवमेंट चला कि अगर पुरुष देवता है तो स्त्री देवता होंगे और वो भी उतने ही ताकतवर होंगे। और हमने तो ऐसा बनाया कि माइथोलॉजी में जो ज्यादातर जो देवता होते हैं वो किसी ना किसी के हेड होते हैं, जैसे कुबेर है खजाने का है, वरुण है पानी का है, इंद्र है बादल का है। और जितने भी वाइटल जितने भी मुख्य विभाग है सब स्त्री हेड हैं, आपके शक्ति के ताकत के। इवन जो पुरुष पौरुष के लिए घमंड करते हैं मर्दांगी के लिए, उस पुरुष की जो शक्ति है वो स्त्री होती है, शक्ति स्त्री है, उसको हमने दुर्गा या काली के रूप में माइथोलॉजी में देखा। जिस चीज के लिए पुरुष दूसरा घमंड करता है कि मैं पैसा कमाता हूं, पैसे की देवी के रूप में भी हमने लक्ष्मी को रखा है। पुरुष एक तीसरी चीज में घमंड करता है कि मेरे पास ज्ञान है, तो ज्ञान की देवी सरस्वती के रूप में रखा। पुरुष जिस जिस में घमंड कर सकता है उस वो सब चीज की मालकिन स्त्रियां बनी। आपका पौरुष हो, आपका ज्ञान हो, आपका धन हो, और जिन जिन चीजों से स्त्रियों को दबाया गया, ये तीन चीजें थे जिनको स्त्रियों को दबाया गया कि हम मर्द हैं, हमारे पास फिजिकल पावर ज्यादा है इसीलिए तुम नीचे रहोगे, हम पैसा कमाते हैं इसीलिए तुम नीचे रहोगे, और हम तुमसे ज्यादा इंटेलेक्ट हैं, हम ज्यादा ज्ञानी हैं इसलिए तुम नीचे रहोगे। और हमारे जो भी माइथोलॉजी को लिखने वाले जो कवि ऋषि रहे, दोनों ने उन सभी पुरुष की घमंड के सारे शक्तियों का जो मूल सोर्स है स्त्रियों के साथ जोड़ के देखा। तो इट्स ए फेस्टिवल ऑफ फेमिनिज्म, इट्स ए फेस्टिवल ऑफ फेमिनिन पावर, ये विजयादशमी। अगर दुर्गा भक्त इसको समझ पाते हो तो वो अलग बात है, मंदिर की दुर्गा आरती उतार के घर में बीवी को पिटाई करना शुरू करते, और करते हैं मोस्ट ऑफ दुर्गा भक्त तो यही करते हैं, जैसे मोस्ट ऑफ राम भक्त भाई से लड़ते हैं। रामायण की चौपाई रोज पढ़ेंगे, एक स्क्वायर फुट जमीन के लिए भाई भाई से दुश्मनी करेंगे, क्योंकि हम माइथोलॉजी पर ज्यादा भरोसा करते हैं, उसकी मोरालिटी पर कम भरोसा करते हैं। वी आर नॉट ईगर टू एक्सेप्ट द मोरालिटी, वो बड़ा आसान होता है स्वीकार करना। दूसरा जो है कि राम ने रावण को मारा, रावण बुराइयों का प्रतीक है। और तीसरा जो थोड़ा ज्यादा पॉपुलर जो कम पॉपुलर है कि पांडव जब जुआ खेलने में हारने के बाद 12 साल तक अज्ञातवास में रहे, अज्ञातवास मतलब जो एक्साइल में जो उनको बाहर रहना पड़ता है वनवास में, एक्साइल इन फॉरेस्ट, और एक साल तक उनको छुप के रहना है कि ऐसी हालत में रहना है कि किसी को पता ही नहीं चले कि वो कहां है, तो विराट के राज्य में वो छुपे। और क्योंकि वो क्षत्रिय थे, देयर वॉरियर्स, उनके पास अपने जो अस्त्र शस्त्र आयुध होते थे उनको छुपाना जरूरी थे, नहीं तो पकड़े जाएंगे। तो जो विराट के राज्यसभा में छुपने से पहले वेश बदल के, तो उन्होंने एक शामी पेड़ में सारे अपने अस्त्र शस्त्रों को छुपा के गए थे। तो ऐसे कहते हैं कि इसी विजयादशमी के दिन ही के वो सारे उनको अस्त्र शस्त्र लाना पड़ा, क्योंकि कौरव लड़ाई करने के लिए विराट के सेना पर आक्रमण कर दिया था, अटैक कर दिया था। और जो विराट का बेटा था उत्तर, वो इतना कमजोर था, मतलब वो छोटा सा बच्चा था, वो कमांडर था, वो आर्मी चीफ बनाया गया था, तो उसको सपोर्ट करने के लिए पांडवों को आना पड़ा। बट दैट वॉज द लास्ट डे ऑफ देयर अज्ञातवास, और वो अस्त्र शस्त्र लेकर के उस दिन आया और लड़ाई की, कौरवों को हराया। तो बहुत सारे कहानियां उसके पीछे चलती रहती है। पर विजयादशमी का जो महत्व है किसी भी एंगल से कि इस दिन जो भी हुआ था विजय हुआ था, तो रावण के जगह राम विजय हुआ, महिषासुर के जगह दुर्गा विजय हुई, कौरवों के स्थान पर पांडव विजय हुए, या आपकी बुराइयों के स्थान पर आपके अच्छाइयां विजय हुआ, या आपके झूठ के स्थान पर सच जीता, जितना होता है ये जितने का पर्व है। इसीलिए हमारे यहां और एक इसी दशहरे के दिन पर्व मनाया जाता है शस्त्र पूजा की। शस्त्र पूजा मतलब जो जिनके पास घर में जो भी अस्त्र, जैसे बहुत सारे लोग जब सरस्वती पूजा होती है तो घर में किताबें कापी इनकी इनकी पूजा करते हैं, जब विश्वकर्मा पूजा होती है तो लोग उस दिन अपने जो टूल्स हैं, जो औजार है जिसके द्वारा वो कमाते हैं, इवन जो जो इंजीनियर है वो कंप्यूटर को, जो गाड़ी चलाता है अपनी गाड़ी को, जो मैकेनिक है अपने टूल्स को, उसको पूछता है। कभी कभी लोग पूछते हैं, वेस्टर्न लोग क्या पूछेंगे, ईस्टर्न लोग हमारे लोगों को तो पता ही नहीं होता है, शुक्र है कि वो ईस्ट लोग पूछ लेते हैं कि क्या चीज है, हमारे लोग पूछते भी नहीं है क्योंकि वो खुद को इतने बड़े बड़े ज्ञानी विद्वान समझते, पूछते ही नहीं है। वो पूछते हैं कि ये क्या चीज है, आपके यहाँ गाय पूछते हैं, घोड़ा पूछते हैं, हाथी पूछते हैं, पेड़ पूछते हैं, गाड़ी पूछते हैं, क्या मतलब है, तो बड़ा दफियानुसी चीजें हैं। उसके कंसेप्ट क्योंकि हम ही नहीं जानते तो इसलिए हम नेचुरली हम दफियानुस हैं, क्योंकि हमें दफियानुस इसीलिए कहते, क्योंकि आप क्यों करते हो नहीं जानते हो उसके बावजूद करते हो। जो व्यक्ति क्यों करता है ना जान के करता है उससे ज्यादा बेवकूफ अंधा और कौन हो सकता है। कम से कम जिससे करवाते हैं उसे पूछ लेना चाहिए, भाई विश्वकर्मा के पूजा के दिन हम क्यों इसको मशीन को पूजे, क्यों सरस्वती पूजा के दिन किताबों को पूजे, क्योंकि हमारे यहां देवता तत्व जो है, जो कंसेप्ट ऑफ देवता इज नॉट गॉड, क्योंकि ये गॉड शब्द अंग्रेजी में तो हमारे यहां बहुत सारे चीजों को खा जाता है। हमारे यहां ईश्वर भगवान अलग है, देवता अलग है, माँ बाप देवता है, मतलब थोड़ी ये कि वो ईश्वर हो गए, सृष्टि को बनाने वाले हो गए। जो देवता का कंसेप्ट था वो ये था कि जिस भी व्यक्ति का, जिस भी वस्तु का मेरे जीवन में कुछ कुछ कंट्रीब्यूशन है, इसको ऐसे कहते हैं वैदिक शास्त्र में, देवो दानाद वा दीपनाद वा द्योतनाद वा द्युस्थानो भवती इति वा, मतलब देवता का मतलब जो देता है, जो मुझे, जो दूसरों को प्रकाशित करता है, जो खुद प्रकाशित होता है, वो सब देवता है। मतलब इसको समराइज करके एक सिंबल सिंपल सेंटेंस में आपको बोलें, जिसका भी किसी के लाइफ में कोई कंट्रीब्यूशन है वो उसके लिए देवता है। अगर मैं जिंदा हूं, मैं आपके सामने दिखता हूं, मैं बोलता हूं, जो कुछ भी मैं हूं वो मेरे कारण में नहीं हूं, ना मैं पैदा हूं मेरे कारण से, ना मेरे पास जो ज्ञान है वो मेरे कारण से, वो बहुत लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन है। अगर हवा नहीं होते, पानी नहीं होता, आग नहीं होता, ये धरती नहीं होती, तो मैं कहां जिंदा रहता, ये पेड़ पौधे नहीं होते, फसल नहीं होता, तो मैं कैसे जिंदा होता। तो ये मेरे लिए देवता हैं, क्योंकि इनके मेरे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन है जिनके कारण मैं हूं। इसी तरह मेरे मां बाप नहीं होते, मेरे टीचर्स नहीं होते, मेरे पड़ोसी रिश्तेदार नहीं होता, तो मेरे लाइफ कैसा होता। जिसका भी मेरे लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूशन है तो मैं इसको देवता कहता हूं। इसलिए हमारे यहां होता है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य, मां देवता है, पिता देवता है, टीचर देवता है, अतिथि देवता है। अतिथि का मतलब कोई गेस्ट नहीं है, ये भी बहुत गलत परंपरा बनी है। मतलब कोई भी घर में आ जाए तो वो अतिथि शब्द से उसका वो अर्थ नहीं था। अतिथि का अर्थ था जो समाज सेवक है, जो सोशल सर्वेंट है। प्राचीन काल में सोशल सर्वेंट इस तरह का शब्द नहीं होता था, वानप्रस्थ आश्रम होता था, मतलब जो अपने लिए नहीं कमाता है, जो अपने लिए नहीं करता है, जो समाज के लिए करता है, जो दूसरों के लिए करता है, ऐसा उस स्टेज में रहने वाले व्यक्ति। सन्यासी वो भी खुद के लिए नहीं करता है, ये वानप्रस्थ और सन्यासी। ब्रह्मचारी वो भी फ्यूचर ऑफ नेशन है, फ्यूचर ऑफ लाइफ है, ये जो तीन कम्युनिटी के लोग हैं जो खुद के लिए नहीं करते हैं, वो सब दूसरों के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं, ऐसे लोगों को उनका ख्याल रखना, वो जब भी आपके घर पहुंचे उनको भूख लगे प्यास लगे उनको सत्कार करना, रिस्पेक्ट देना, क्योंकि उनका अपना कोई घर नहीं होता था, वो कहीं एक जगह टिक नहीं सकते थे, उनके रूल है, वो भिक्षा करके गुजारा, दूसरों के भिक्षा पर गुजारा करना होता था, इसीलिए हमने नियम बनाया। वो देवता हैं, वो अतिथि हैं, हमारे घर में बिना पूछे अचानक पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं कि आपका रिश्तेदार घर में आ गया तो वो देवता हो गया। सवाल है कि देवता का मतलब है कि कंट्रीब्यूशन है, वो अतिथि है, वो सन्यासी है, वानप्रस्थी है, ब्रह्मचारी है, वो स्टूडेंट है। अगर उसको कंटेम्प्ररी भाषा में कहें, वो स्टूडेंट है, वो सोशल वर्कर है, या वो ज्ञान या सत्य को ढूंढने वाला व्यक्ति है। अगर वो अचानक मेरे घर में आया है भूखा प्यासा व जिस परिस्थिति में, मैं उसको रिस्पेक्ट करूं, जो मेरे पास है उसको, उसके जो समस्या है उसको दूर करने के लिए दूं, ये अतिथि सत्कार था। तो ये जो देवता का कंसेप्ट है, इसीलिए आप देखेंगे हमारे यहां पेड़ों को पूजने का, क्यों, बिना पेड़ के आप जी नहीं सकते हो, कीड़े मकोड़े से लेकर के हर चीज का हमारे लाइफ में कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन है। इसलिए हमने अलग अलग त्योहार बनाया, अलग अलग चीजों को अलग अलग रूप में पूजा करने के लिए। हम गाय को पूजते हैं, वो अलग बात है कि गाय को पूजने के लिए आरती उतार के सिंदूर लगा के घर में जाकर के खीर पूरी खाओ, अब बेचारा गाय दोबारा बंधी रहे, शाम को सारा दूध निचोड़ के ले जाओ, उसके बछड़ा मैं करता रहे। जैसे ये जो हमारी ट्रेडिशन बनी, हमने मोरालिटी को छोड़ करके ट्रेडिशन के पीछे पड़ गए। हम दुर्गा के तो बड़े भक्त हैं, पर पत्नी और बच्ची को सेकेंडरी समझते हैं हमेशा, स्त्रियों को हमेशा अपने से कमजोर समझते हैं। मैं राम का तो भक्त हूं, पर भाई के लिए लड़ने के लिए 24 घंटा तैयार होता हूं। उसी तरह मैं गो भक्त तो हूं, पर गाय की आरती उतारता हूं, पर कभी गाय को खुला नहीं छोड़ता हूं, उसको हरे घास खाने के लिए कभी देने के लिए कोशिश नहीं करता हूं, उसके बछड़े को दूध पीने के लिए कभी मैं छोड़ता नहीं हूं, पर मैं गाय का भक्त हूं। मैं पेड़ का भक्त हूं, पेड़ में मैं रस्सी बांधता हूं, लाल धागा बांधता हूं, तिलक लगाता हूं, हे पेड़ देवता मुझे कुछ दे दो, पर गर्मी में कभी पेड़ में पानी देने के लिए सोचता नहीं हूं। तो ये जो पूजा का एक बड़ा बड़ा विकृत परंपरा शुरू हुई, उसका परिणाम हुआ कि हम बड़े अच्छे भक्त बने, वी आर गुड डिवोटीज, बट वी आर बैड ह्यूमन बीइंग। हमारा नेचर खराब है, हमारा चरित्र खराब है, हमारे दूसरों को देखने का नजर खराब है, उसके बावजूद भी हम भक्त बन गए। ये जो ड्वालिटी ऑफ नेचर है, ये हमारे लोगों में ज्यादा देखने को मिलता है। उसका कारण है कि हम या तो हम उसके बैकग्राउंड को नहीं समझ पाते हैं, या समझते हैं, हमें लगता है ये मोरालिटी हमारा काम नहीं, हम अपने बच्चे को संस्कृति स्कूल में सिखवा देंगे वो वहां सीखेगा, हम तो उसको छोड़ करके चलेंगे स्टोर में कहीं थोड़ा घूम फिर के आ जाएंगे, ये बच्चों का काम है सीखने का, मोरालिटी सीखें, हम तो अपनी बेईमानी में पूरे मस्ती में रहेंगे, हम अपनी बीवी को छोटा समझेंगे, पर हम अपने भाई को भी भाई के साथ लड़ने को तैयार है, हम हर बुराई को एक्सेप्ट करने को तैयार है, ये हमारा काम नहीं है, पर मंदिर जरूर जाना है, पूजा पाठ जरूर करना है, हर त्योहार में उपवास रखना है, क्योंकि हम धार्मिक है। कैसा धार्मिक सज्जनों देवियों, जब मर के ऊपर जाएंगे भगवान के पास, वो आपका ये थोड़े हिसाब करेगा कि कितनी बार पूजा करके आए हो, वो देखेगा कितना पाप किए हो, कितना पुण्य किए हो, कितना अच्छा किए हो, कितना बुरा किए हो। मोरालिटी सिखाना सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होना चाहिए, और ध्यान रखिए जो माँ बाप बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं उनके बच्चे कभी नहीं सीखते, यकीन मानिए। आप चाहे तो अभी बच्चों को ले सकते हो, कुछ नहीं सीखने वाले। अगर आप हिंदी बोलते नहीं और आपकी बड़ी ख्वाहिश है मेरे बच्चा अमेरिका में रहते हुए भी हिंदी में बोले, जीरो सवाल नहीं उठता, खुद ब्रह्मा भी नीचे उतर आए आपके बच्चे को हिंदी सिखाने के लिए, नहीं सिखा सकते, क्योंकि आप घर में नहीं बोलते हो। अगर आप चाहते हो कि आप बच्चा कुछ अच्छा बने, अगर आप ऐसा कुछ नहीं करते हो घर में, तो कभी नहीं बन सकता। अगर बन गया उसके चरणों में गिर जाना, वो अच्छा बना डिस्पाइट ऑफ यू, इसका मतलब आपके आपके बुरे होने के बावजूद, कुछ ना करने के बावजूद वो अच्छा बना, इसका मतलब उसका पुराना संस्कार है, पिछले जन्म में कोई अच्छी आत्मा रहा होगा जो आपके जैसे मेरे जैसे माँ बाप के घर में पैदा हुआ, कुछ ना किए बिना भी अच्छा बन गया, उसके चरणों में गिर जाना, बेटा हो बेटी हो पर मेरे से बेहतर हो। ये गर्व नहीं करना कि वो संस्कृति स्कूल जाकर के सीख करके महान बन गया। वो तभी बनेगा जब घर में आप उसको सिखाओगे, घर में वो प्रभाव डालोगे, आपके इंटरेस्ट होगा। अगर आप बच्चे को धार्मिक बनाना चाहते हो खुद धर्म के प्रति इंटरेस्ट रखो, हिंदी सिखाना चाहते हो तो खुद हिंदी के प्रति रुचि रखो, कुछ अच्छा सिखाना चाहते हो तो खुद अच्छा रखो, तब बनेगा। ये जो ड्युअलिटी का नेचर हमारा बना, इसके कारण हमारे अच्छे अच्छे सिद्धांत भी सब बिगड़ गए। तो ये जो शस्त्र पूजा है, इसीलिए जो मैकेनिक है उसके लिए जो मशीन है उसके लाइफ है, जो गाड़ी चलाता है गाड़ी उसके लिए लाइफ है, क्योंकि वो सोर्स ऑफ लिविंग है, जिंदा रहने के लिए तरीका है, इसीलिए उसको रेस्पेक्ट करना चाहता है। हम पेड़ों को इसीलिए नहीं पूछते कि उसका आरती उतारे, पूजने का मतलब उसका ख्याल रखें, क्योंकि पेड़ों के बिना हम जी नहीं सकते। तो इसी तरह जो क्षत्रिय होते हैं वो अपने अस्त्र शस्त्र को रेस्पेक्ट करते हैं, इस दिन उसको धो करके मांज करके साफ करके पूजा घर में रखते हैं, उसको वही देवता का सम्मान देते हैं, क्योंकि ये हमारे मेरे जीवन का साधन है, इसके बिना मैं लड़ नहीं सकता, वो उसका अंग है, इसीलिए शस्त्र पूजा करते हैं। हमारे यहां एक बड़ी सुंदर संस्कृत में वाक्य है, शस्त्रेण रक्षिते राज्य शास्त्र मेवाभिरक्षते। जिस जो राज्य व जो देश वेल प्रोटेक्टेड ना हो तो उस देश में आप ना ज्ञान पा पाएंगे, ना शास्त्र चर्चा कर पाएंगे, ना सत्य धर्म अहिंसा की चर्चा कर पाएंगे, कुछ नहीं होगा। आप क्या करेंगे आजकल के इराक में आप जाकर के, वो आईसीसी का जो इस्लाम स्टेट बनाया है, इस्लामिक स्टेट, वहां जाकर के आप कौन सा शास्त्र चर्चा कराएंगे, किसको सत्य धर्म की शिक्षा देंगे? तो अच्छी बातें वहीं सिखाई जा सकती है जहां राज्य व स्टेट वेल प्रोटेक्टेड हो। अगर आप बीमार हैं तो आप कोई अच्छी चीजें थोड़े सीखने को इंटरेस्ट रखेंगे। इसीलिए समाज को राष्ट्र को बचाने की जरूरत होती है, और उसके लिए जरूरी क्या है कि हमारे जो क्षत्रिय मतलब आज की भाषा में जो आर्मी है, जो पुलिस है, जो बदमाशों से, गुंडों से, डाकुओं से, चोरों से, विदेशी दुश्मनों से बचाने की जरूरत होती है, और उसके प्रति भी हमारी उतनी जिम्मेदारियां होती है, इसीलिए शस्त्र के हमारे सम्मान होना चाहिए। वेदों में आता है यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सम्यम च उचरत, जहां जिस देश में व समाज में ब्राह्मण मतलब शास्त्र ज्ञान, क्षत्र मतलब शक्ति, ज्ञान और शक्ति दोनों का कॉम्बिनेशन हो, वो दुनिया में सबसे बड़ा राज करता है। जो देश भी वेल प्रोटेक्टेड है, वो यूरोपियन देश हो या अमेरिका हो, तो जो भी हो, जो बाहरी दुश्मनों से जितना रक्षित होता है वो उतना तरक्की के आगे पर चलता है। जहां आतंकवाद की समस्या हो, जहां रोज लड़ाई झगड़े की समस्या चलती हो, जहां डाकू बदमाश चोर लुटेरे रिश्वतखोरों की चलती हो, वहां कुछ भी करके तरक्की नहीं कर सकते। तो पहले उससे पहले आपको शस्त्र की रक्षा करनी पड़ेगी, शस्त्र सीखना पड़ेगा, फिर शास्त्र की चर्चा। आप प्राचीन काल में देखेंगे जी, जितने भी बड़े बड़े गुरु लोग होते थे, जो गुरुकुल में पढ़ते थे, तो गुरुकुल में ही वो सिर्फ कोई, हमें बड़ा मिसपरसेप्शन है, मिसकंसेप्शन है कि भाई पहले गुरुकुल में सब वेद उपनिषद दर्शन यही सब धर्म कर्म सीखते थे। तो कृष्ण भी गुरुकुल में पढ़ के आया, राम भी गुरुकुल में पढ़ के आया, तो लड़ाई सीखने के लिए तो अलग से कोई ट्रेनिंग आर्मी कैंप में नहीं गया था, आर्मी स्कूल में। राम विश्वामित्र के गुरुकुल में पढ़ के आया, कृष्ण सांदीपनि के गुरुकुल में पढ़ के आया, कौरव पांडव द्रोण के गुरुकुल में पढ़ के रहा, गुरुकुल में तो नहीं, द्रोण खुद ट्यूटर बन के उनके घर में रहा। तो फिर वो इतने योद्धा कैसे बन गए? वो सांदीपनि ऋषि है, वशिष्ठ ऋषि है, विश्वामित्र ऋषि है, बिल्कुल अहिंसक सीधे सादे ऋषि मुनि तपस्वी, पर शिष्यों को सब कुछ सिखाते हैं, अस्त्र भी उतना ही सिखाते हैं जितना शास्त्र सिखाते हैं, दोनों में प्रवीण होना जरूरी है। अपने आप को प्रोटेक्ट करना भी सीखना चाहिए, और जब जब आप प्रोटेक्टेड हो गए तब आप दूसरे को प्रोटेक्ट कर पाओगे। हमारे गुरु लोग आजकल की तरह एक एक सब्जेक्ट नहीं सिखाते थे, सब कुछ सीख करके बाहर आते थे, शस्त्र और शास्त्र की प्रदर्शनी थी। आप देखिए जो बड़े बड़े जो 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 ऐतिहासिक पुरुष हैं, वो चंद्रगुप्त हो, चाणक्य शास्त्रज्ञ है और चंद्रगुप्त राजा है, क्षत्रिय है, वो शस्त्र और शास्त्र का मिलन है। और आधुनिक काल में देखिए शिवाजी और रामदास को, कृष्ण और संदीपनी को, कृष्ण और अर्जुन को देखिए, तो ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। सिखों के दशम गुरु गोविंद सिंह जी एक बड़ी सुंदर बात कहा करते थे, बड़ी कि हिंदू जो है ना धीरे बहुत तो बिल्कुल चिड़िया बन गई है, पू 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 पू, अब कुछ नहीं बचा, इसको बाज बनाना है। और वो बाज बनाया, जिन लोगों को बनाया वो शिष्य कहलाए, सिख बने। वो अलग बात है कि वो बाद में फिर वो उस रिलीजियस धार्मिक चक्कर में वो भी जहां से आए उसी के अलग होने लग गए, पर उद्देश्य यही था कि धर्म तब तक नहीं चल सकता, आपके समाज तब तक सभ्य नहीं हो सकता जब वो पूरी तरह सुरक्षित ना हो। ये जो विजयादशमी है, ये जो नौ, इससे पहले जो नवरात्रि चलती है, नव मतलब नाइन, रात्रि मतलब नाइट, नौ रात का पर्व है, और उसका जो कल्मिनेशन है वो विजयादशमी या दशहरा के रूप में हम मनाते हैं। नवरात्रि में हम क्या करते हैं, बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। ये इट्स ए फेस्टिवल ऑफ प्यूरिफिकेशन, अपने आप को, अपनी जो अंदर की बुराइयां हैं, जो गंदगियां हैं, उसको साफ करने को का ये पर्व है। उपवास रखना एक बहुत बड़ी चीज है। वैसे स्वामी दयानंद कहते हैं वो जो एकादशी या उसके व्रत रख के उपवास करते वो उसके खिलाफ बोलते थे, उसका मूल कारण था वो उपवास के खिलाफ नहीं थे। उपवास से आपकी शारीरिक शुद्धता होती है, मानसिक शुद्धता होती है, बौद्धिक शुद्धता होती है। आप अगर 15 दिन में कम से कम, एक हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार भी आप अगर उपवास, मतलब भूखा रहते हैं, पानी पीते हैं केवल, मतलब उपवास का मतलब ये नहीं कि आप रोटी छोड़ के वो उसकी रोटी खाने लग जाए, पूरी तल के शाम को खाने लग जाए। उपवास का मतलब आप सचमुच खाना नहीं खाते और पानी पीते, तो आपकी सैकड़ों बीमारियों का इलाज होगा, आपके पेट साफ होंगे, आपका मन शुद्ध होगा, अगर कर सके। ये स्वास्थ्य के लिए, मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बड़ा जरूरी है। पर प्रॉब्लम तब होता है क्योंकि जैसे कि हमारी आदत है, हम उसकी मोरालिटी को खो देते हैं और ट्रेडिशन पर इतना चल जाते हैं, और सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को होती है। हमारे यहां विधवाएं एकादशी के दिन उपवास रखते हैं, विधवाएं मतलब जो जिनके पति मर चुके हैं। अब बेचारी बीमार है, आप वृंदावन जाइए, मथुरा जाइए, काशी जाइए, देखिए 70-80 साल की बुजुर्ग है, बीमार है, बुखार है, जो भी है, पेट में परेशानी है, भूखा रहना पड़ता है, न रहे तो ताना सुनना पड़ता है, सामाजिक समस्याएं होनी पड़ती, तो ये किसी चीज को रिजिडिटी के साथ फॉलो करना, उसके पीछे मोरालिटी को भूल करके ट्रेडिशन के नाम पर फॉलो करना, ये बड़ा खतरनाक होता है। और आपको पता है सबसे ज्यादा जब भी समाज में धार्मिक रूप में जो भी परेशानियां आती है, सबसे ज्यादा परेशानियां स्त्रियों को भोगना पड़ता है। पर उपवास से शारीरिक और मानसिक शुद्धता आती है। नवरात्र के नौ रात्रि में जब हम ईश्वर की स्तुति की भक्ति के लिए अपने मन को शुद्ध करते हैं, अपने इंद्रियों को शुद्ध करते हैं, उपवास करके या ईश्वर स्तुति प्रार्थना करके, भक्ति करके शुद्ध करते हैं, ये जो हमारे अंदर जितने भी अच्छाइयां बुराइयां हैं, ये तीन गुणों से युक्त हैं, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। ये तीनों खराब नहीं है, तमोगुण कोई खराब चीज नहीं है, यह तमोगुण बुराइयों का कारण होता है, पर तमोगुण नहीं होगा आपको नींद नहीं आएगी। तमोगुण नहीं आएगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, तो गुस्सा नहीं आएगा तो आप बच्चों को कैसे कंट्रोल करोगे, तो कोई मानेगा ही नहीं, ऑफिस में कैसे काम करोगे। तो गुस्सा कोई बुरी चीज थोड़े ही है, गुस्सा के ऊपर आप जब कंट्रोल खो बैठते हैं तो वो बुरी चीज होती है। जो कुछ आपके अंदर है कोई बुरा नहीं है, बुरा है कि आप इसको यूज कैसे करते हो। ड्रग बुरा नहीं होता है, जो डॉक्टर इसको आपको दवाई के रूप में देता है तो आपकी बड़ी बड़ी बीमारियां ठीक हो जाती है, पर जब आप इसका मिसयूज करते हो, आप इसको अब्यूज करते हो, तो आप बर्बाद होते हो। तो ईश्वर ने हमें सब कुछ दिया है, वो अच्छा दिया है, गुस्सा दिया है, तो प्यार, जो कुछ भी हमारे अंदर है उसका एक फायदा है। जैसे ईर्ष्या, जेलेसी, हम बुरा मानते हैं, पर दुनिया में बड़े बड़े जिन्होंने भी लाइफ में सक्सेस किया है, बहुत आगे बढ़े हैं, वो जेलेसी के कारण। अगर जेलेसी से आपको इंस्पिरेशन मिलता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलता है, तो आपके लिए पॉजिटिव हुआ। पर जेलेसी से अगर आप दूसरे को नुकसान करते हो, खुद का ब्लड प्रेशर बढ़ाते हो, तो आप बर्बाद होते हो। तो आप उसको यूज कैसे करते हो। ये तीनों गुण हमारी शक्तियां होती हैं, पर शक्ति तभी होगी अगर हम उसको समझें। तो नवरात्र के पहले 3 दिन तमोगुण को साधना होता है, और तमोगुण के प्रतीक के रूप में दुर्गा और काली, जिसको माइथोलॉजी में हम पढ़ते हैं। रजोगुण 3 दिन तक हम रजोगुण को साधते हैं। रजोगुण धन शक्ति, जो लक्ष्मी की, लक्ष्मी जिसके रूप लेते हैं, और आखिर 3 दिन में सत्वगुण की साधना करते हैं। सत्वगुण का जो किसी को उसका रिप्रेजेंट होता है ज्ञान, आपका वैराग्य, जो सरस्वती के रूप में आप पूछते हैं। जब आप तीनों गुणों को समझ जाते हैं अपने शरीर के और उनको साधते हैं, तो 10वां दिन होता है जब ये तीनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। मतलब तीनों गुण आपको कंट्रोल नहीं करते, आप उनको मास्टर हो चुके हैं, आप अपने हिसाब से अपने तमोगुण को यूज करना समझ चुके हैं, आप अपने हिसाब से अपने रजोगुण को यूज करना समझ चुके हैं, आप अपने हिसाब से अपने सत्वगुण को यूज करना सीख चुके हैं, उस दिन आप विजयी बनते हैं। यू आर विक्टोरियस, और आप उसको सेलिब्रेट करते हैं विजयादशमी के रूप। वो विजयादशमी शत्रु को जितना हो, बाहरी शत्रु को, रावण महिषासुर के रूप में हो, या अंदर की अच्छी बुराइयों को जितना हो, अब 9वें दिन उसको जीतने की कोशिश करते हैं। तो विजयादशमी वही हमें संदेश देता है, जीवन में आपने अच्छाई या बुराई, तो सामाजिक बुराई हो या अंदर की बुराई, बाहर की बुराई को, अंदर के कहीं के भी हो, बुराइयों के जीतने का नाम है। और जब आप जीत जाते हैं तो आप एक डीप जर्निंग, आपकी जर्निंग शुरू होती है, आपकी यात्रा शुरू होती है टू द डीप पोजिशन। अब अंदर की ओर यात्रा करने लगते हैं, उस आत्मा को पाने की कोशिश करते रहते हैं। दशहरा इज प्रेसिडेड बाय 9 days ऑफ फास्टिंग, द नवरात्र। फास्टिंग डजंट मीन अब्सटिनेंस फ्रॉम सर्टन फूड्स एंड देन बींगिंग ऑन द अल्टरनेटिव। मतलब ये नहीं कि आप रोटी छोड़ के खीर खाने लग गए, ये कैसा नहीं है। इट सिंपली मीन्स अब्सटेनिंग फ्रॉम इंडल्जिंग योर सेंसेस फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम फॉर हायर पर्पस। आप कहेंगे व्हाई इट इज फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, Why not for always? ये तो बड़ी अच्छी बात है। और जिस दिन आप हमेशा के लिए छोड़ देंगे, फिर आप ऐसे थोड़े ही मिलेंगे, तो आप स्टेज पर मिलेंगे, आप कहेंगे हम साधु है, महात्मा है, बाबा है, आपके तो चरण, फिर तो आप महात्मा गांधी की तरह पूजे जाओगे, फिर तो आप बुद्ध की तरह पूजे जाओगे, फिर तो आप शंकर की तरह पूजे जाओगे। असम पर आप ट्राई तो कर सकते हो, 4 दिन के लिए शुरू कर सकते हो, 8 दिन के लिए शुरू कर सकते हो, इसीलिए 9 दिन का दिया, 10 दिन का दिया, कुछ तो कहीं से शुरू करो। हो सकता है आपके यहाँ ट्रिक कर गया, आपके अंदर सचमुच चल गया, क्या पता कि आप साल भर करने लग जाओ, क्या पता जिंदगी भर, पर शुरू से तो कहीं से करोगे। जब भी शुरू करोगे आप सेलिब्रेट करोगे, आप फेस्टिवल मनाओगे, तो क्योंकि जब तक आप सेलिब्रेट नहीं, ये हमारा और एक ट्रेडिशन है, हम हर चीज को सेलिब्रेट करते हैं, मौत को भी सेलिब्रेट करते हैं, पैदा को भी सेलिब्रेट करते हैं, हर चीज को हम सेलिब्रेट करते हैं। और एक दो बात करके समाप्त करता हूं। जैसे हम जैसे कहते हैं कि रावण को मारा राम ने, राक्षसों का, ये राक्षस कुछ नहीं होता है, राक्षस कोई सचमुच ऐसा नहीं है जो 15 किलोमीटर लंबा है, 18 किलोमीटर चौड़ा है और एक 6 फुट का आदमी जाकर उसको मार डालता है, ये असंभव है। राक्षस उस व्यक्तियों का नाम है जो क्रूर है, जो बदमाश है, जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। राक्षस उस चीज का नाम है जो हमारे अंदर जो बुराइयां है, जो लालच है, लोभ है, जो जो ईर्ष्या है, जो द्वेष, जिसके कारण हम अपने आप को बीमार बनाते हैं और दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। आज भी जैसे मैंने शुरू में कहा, रावण ने, रावण, आप देखिएगा जब आप राक्षस की कहानियां पढ़ेंगे तो आपको बड़े इंटरेस्टिंग पता चलेगा कि ज्यादातर राक्षस इंसानों से धनी है। लंका देखिए, लंका क्या था? अयोध्या से ज्यादा धनी था, वहां सोने की भरमार था। आप कहेंगे अनपढ़ होंगे, नहीं, लंका में अयोध्या से ज्यादा पढ़े लिखे थे। रावण खुद सबसे बड़ा ज्ञानी था उन दिनों, वेदों के, उपनिषदों के, सबके महाज्ञानी था। आप कहेंगे राक्षस तो बदमाश होता है, वो यज्ञ नहीं करता होगा, अयोध्या से ज्यादा यज्ञ लंका में हुआ करते थे। ऐसा कोई चीज नहीं जो राक्षस नहीं करते हैं, सिर्फ फर्क क्या है, वो इंटेंशन, आप क्या इंटेंड करके करते हो। राक्षस यज्ञ करते हैं कि जिससे कि हमें शक्ति मिले, हम दूसरों की बर्बाद करें। हमें ताकत चाहिए दूसरों के ऊपर डोमिनेट करने के लिए, ये राक्षसपन है कि धन कमाना है दूसरों को लूट के, दूसरों को केयर न करते हुए, ये राक्षसत्व है। जो वेस्टर्न कल्चर है ये राक्षस कल्चर है, ये बुरा कल्चर नहीं है, इसे प्रॉस्परस कल्चर, इट्स ब्रिलियंट कल्चर। पर जहां सिर्फ मैटर को वैल्यू दिया जाता है, जहां आत्मा को, ह्यूमैनिटी को वैल्यू नहीं दिया जाता है। तो मेरे अंदर हो सकता है, आपके अंदर हो सकता है, पर वेस्टर्न कल्चर उसको रिप्रेजेंट करता है। एक आखिर वाली एक लाइन कह के खत्म करते हैं। विजयादशमी में, मनुस्मृति में एक सुंदर श्लोक आता है, अधर्मेण धते तावत् ततो भद्राणि पश्यति ततः सपत्नान् जयति समूलस्तु विनश्यति। ज्यादातर हमें लगता है, जैसे रावण को लगा, कंस को लगा, महिषासुर को लगा, हमारे में से बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि गलत काम करके पैसा कमाने में, गलत झूठ बोल के कुछ करने में क्या फर्क पड़ता है। देखिए मनुस्मृति कहता है, अधर्मेण एधते तावत्, इट्स इंडीड यू विल सक्सीड बाय डिसऑनेस्टी। ये झूठ नहीं है, आप बुरा करेंगे, डिसऑनेस्ट होंगे, आप जरूर सफल होंगे लाइफ में। बाय डिसऑनेस्टी मैन थ्राइव्स, प्रॉस्पर्स, देन ही गेन्स ग्रेट गुड फॉर्च्यून, कॉन्क्योर्स हिज एनिमीज। ये सच है, ये डिसऑनेस्टी के द्वारा ही होता है, अधर्म के द्वारा भी होता है, बट एट द एंड इज कट ऑफ एट द रूट एंड सफर एक्सटिंक्शन। रावण बढ़ा, ज्ञानी था, धनी था, रूपवान था, बुराइयों को फैलाता गया, जो बर्बाद हुआ पूरे खानदान के साथ साथ। सज्जनों देवियों, अगर कभी लगता हो कि पाप के कारण कोई बढ़ता हो, वो बढ़ेगा, ये उसका नेचर है, ये अपोजिट नहीं है, इट्स अ नेचर, ये रियल है। पाप से आदमी बढ़ता है, शुरू में बढ़ता है, जरूर बढ़ेगा। अगर हम और आप बढ़ते हैं तो जरूर बढ़ेंगे, अगर आपका पड़ोसी बढ़ता है तो जरूर बढ़ेगा, इट्स नॉट ए यूनिक थिंग। पर जो बर्बाद होगा, खानदान के साथ बर्बाद होगा। और आग अगर आपको अगर ईर्ष्या होती होगी कि मैं क्यों नहीं बुरा नहीं कर पाया, क्योंकि आप धीरे धीरे चलेंगे, हो सकता है उसके तरह बहुत आगे नहीं बढ़ेंगे, पर आप सस्टेन करेंगे, इट्स योर होल फैमिली, इट्स योर होल फ्रेंड सर्कल, एवरीथिंग, आप सस्टेन करेंगे पूरे लाइफ के लिए। विजयादशमी का ही संदेश है, शत्रुओं पर जय लाभ करो, शत्रु अंदर का हो या बाहर का हो। आप सबको विजयादशमी का अभिनंदन है, अपने बच्चों को सिखाने के साथ